पृष्ठ संख्या 495। हम पहले यह देख चुके हैं कि प्रायः सभी संप्रदाय अपना अपना संबंध हजरत मोहम्मद से जोड़ते हैं। नक्शबंदियों में प्रचलित जो वंश वृक्ष है उसे देखने से यह सहज ही समझ में आ जाता है। यहाँ पर सर्वप्रथम हजरत मोहम्मद से बहाउद्दीन नक्शबंद तक का वंश वृक्ष दे रहे हैं, उसके बाद भारतीय नक्शबंदी संप्रदाय का वंश वृक्ष देंगे। 1. पैगम्बर। 2. अबू बकर असद्दीक द्वितीय खलीफा। 3. सलमा फारसी। 4. इमाम कासिम बिन मोहम्मद अबू बकर के पुत्र। 5. इमाम जाफर सादिक। 6. बायजीद बिस्तामी। 7. ख्वाजा अबुल हसन खरकानी। 8. अबुल कासिम गरगानी अथवा करकियानी। 9. अबू अली फरमदी अथवा फरमंदी। 10. ख्वाजा अबू यूसुफ हमदानी। 11. ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी। 12. ख्वाजा मोहम्मद अरीफ रेवगरी अथवा रियोकरी। 13. ख्वाजा महमूद अबू खैर फगनवी। 14. ख्वाजा अली रमीतनी अथवा रमेतनी। 15. ख्वाजा मोहम्मद बाबा संभासी। 16. ख्वाजा सैयद अमीर कलाल अथवा गुलान। पृष्ठ संख्या 496। 17. ख्वाजा सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद। इसके बाद दो परंपराएं मिलती हैं जिनमें कहीं कहीं कुछ अंतर पड़ता है। एक तो पंजाब की परंपरा है और दूसरी परंपरा मिरातल मकासिद एक तुर्की ग्रंथ की है। दोनों परंपराओं के नाम हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं। पंजाबी परंपरा 1. ख्वाजा सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद। 2. ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार। 3. ख्वाजा याकूब चरखी। 4. ख्वाजा नसीरुद्दीन उबैदुल्ला अहरार। 5. ख्वाजा मोहम्मद जाहिद। 6. मौलाना दरवेश मोहम्मद। 7. मौलाना ख्वाजगी अमकिनकी। 8. ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह बेरंग। 9. इमाम रब्बानी मुजद्दीद अलिफ सानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी। 10. ख्वाजा मोहम्मद मासूम। 11. शेख सैफुद्दीन। 12. हाफिज मोहम्मद मोहसिन दहलवी। मिरातल मकासिद की परंपरा मौलाना याकूब चरही हिसारी, ख्वाजा नासिरुद्दीन उबैदुल्ला, ताशकंदी समरकंदी, मोहम्मद जाहिद, मौलाना दरवेश, मौलाना ख्वाजगी समरकंदी, मौलाना शेख मोहम्मद समाकी, इमाम रब्बानी मुजद्दीद, अलिफ सानी शेख अहमद, फारूकी बिन अब्दुल वाहिद फारूकी सरहिंदी, मृत्यु लगभग 1664 ईस्वी, शेख मोहम्मद मासूम उर्वा वसक साहिब मकतूबात, मृत्यु सन 1688 ईस्वी, शेख सैफुद्दीन आरिफ, शेख सईद मोहम्मद नूरी बदायूनी। पृष्ठ संख्या 497। पंजाबी परंपरा सईद नूर मोहम्मद बदायूनी, शमशुद्दीन हबीबुल्ला मजहर शहीद मिजी जनजनान, मुजद्दीद मियातुसालिस वाल, अशार सईद अब्दुल्ला शाह गुलाम अली अहमदी। 16. शाह अबू सईद अहमदी, हाजी दोस्त मोहम्मद कंदहारी, मोहम्मद उस्मान, इनका मकबरा डेरा इस्माइल खां के कुलाची स्थान में है। मिरातल मकासिद की परंपरा शेख शमसुद्दीन खां जानान मजहर, शेख अब्दुल्ला दहलवी, हजरत दियाउद्दीन जूल जन्नाहीन मौलाना खालिद, 50 वर्ष की उम्र में सन 1827 ईस्वी में मृत्यु, इसलिए खालिदिया संप्रदाय कहलाता है। नक्शबंदी संप्रदाय का भारतवर्ष में प्रभाव विस्तार अहमद फारूकी सरहिंदी के द्वारा हुआ। अहमद फारूकी के संबंध में तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इनके शेख बाकी बिल्लाह अपने गुरु का आदेश पाकर भारतवर्ष में आए। उन्हें यहां भेजने में उनके गुरु का उद्देश्य केवल यही था कि आने वाले संत अहमद फारूकी के लिए वे रास्ता साफ कर दें। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि इनके 500 वर्ष पहले ही अब्दुल कादिर जिलानी ने इनके अवतरण की भविष्यवाणी की थी। अहमद फारूकी का जन्म सरहिंद में सन 1563 ईस्वी में हुआ। इनके जन्म के समय कहा जाता है कि कई तरह की विचित्र घटनाएं हुईं। इनके जन्म के दिन से लेकर एक हफ्ते तक किसी संगीतज्ञ का वाद्य यंत्र बजाने पर भी नहीं बच सका। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद अन्य सभी पैगंबरों के साथ आकर इनके कान में अजान दोहरा गए। इनकी मां ने सभी मृत पृष्ठ संख्या 498 संतों के दर्शन किए जो उनके जन्म के अवसर पर उन्हें बधाई देने आए थे। इनके पिता भी सूफी थे। वे 15 विभिन्न संप्रदायों में किसी को दीक्षित कर सकते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अहमद फारूकी को उन सभी में दीक्षित किया था। अहमद फारूकी के नक्शबंदी संप्रदाय में दीक्षित होने की कहानी भी बड़ी विचित्र है। उनके पिता का नक्शबंदी संप्रदाय से कोई भी संपर्क नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद अहमद हज करने के लिए निकले। जब वे दिल्ली आए तो एक मित्र के जरिए वे बाकी बिल्ला के निकट संपर्क में आए। बाकी बिल्ला ने उन्हें अपने साथ एक हफ्ते ठहर जाने के लिए कहा। उन पर बाकी बिल्ला का पूरा असर पड़ा। एक हफ्ते के बाद भी वे उन्हीं के पास ठहरे रहे और अंत में मक्का जाने की बात ही उन्होंने छोड़ दी। दो महीने के बाद वे बाकी बिल्ला के प्रतिनिधि रूप में सरहिंद लौट आए। अहमद फारूकी ने ऐसी प्रसिद्धि लाभ की कि जब वे 4 वर्ष बाद फिर अपने पीर के पास पहुंचे तो उन्होंने भी उनकी पूरी इज्जत की और दूसरे लोगों के साथ बैठकर गुरु भी उनके धर्मोपदेश सुना करते। सुहरावर्दी तथा चिश्ती संप्रदाय वाले भी उन्हें अपना मानते हैं। नक्शबंदी और कादरी संप्रदाय वाले इनके खलीफों से शिष्य बनते रहे। कुछ काल तक तो सभी संप्रदाय वाले उनके शिष्य होते रहे, लेकिन बाद में यह क्रम रुक गया। हजरत मोहम्मद के बाद इन्हें ही लोग इस्लाम का सुधारक मुजद्दीद मानते हैं। इस्लाम में आई हुई अनेक बुराइयों को इन्होंने दूर किया। वे शिया संप्रदाय वालों के विरुद्ध थे। सुन्नी संप्रदाय को इन्होंने पुनः प्रतिष्ठा का स्थान दिलाया। अकबर के चलाए हुए संप्रदाय दीने इलाही के प्रभावों को इन्होंने इस्लाम से दूर किया। सर्वत्र सनातन पंथी इस्लाम के अनुयायियों ने उनको अपना अगुआ माना। सन 1603 ईस्वी में तीसरी बार वे दिल्ली जाकर अपने पीर से मिले। दिल्ली से लौटकर जब वे लाहौर गए, उसके कुछ ही दिन बाद उन्हें अपने पीर बाकी बिल्ला की मृत्यु की खबर मिली और वे दिल्ली लौट आए। वे नक्शबंदी संप्रदाय के सर्वोच्च अधिकारी माने गए। पृष्ठ संख्या 499। अकबर के समय में ही लोग इनके प्रभाव में आने लगे थे और अकबर के दरबार में प्रभावशाली व्यक्तियों को भी इन्होंने अपनी ओर आकृष्ट किया। जहांगीर के समय में इनका प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि जहांगीर आतंकित हो गया। बादशाह की फौजों में धार्मिक सुधार लाने के लिए अहमद फारूकी ने अपने एक शिष्य बहीउद्दीन को नियुक्त किया। जहांगीर के कई उच्च पदस्थ अधिकारी इनके शिष्य थे। जहांगीर ने इस खतरे को देखा और उन अधिकारियों को इधर उधर कई स्थानों में भेज दिया। खाने खानान को डेक्कन में, सईद सदर जहां को बंगाल में, महावत खां को काबुल में तथा खाने जहां को मालवा में भेज दिया गया। बादशाह के प्रधानमंत्री असफ जाह शिया संप्रदाय के थे। हम पहले ही कह चुके हैं कि अहमद फारूकी ने शिया संप्रदाय वालों का विरोध किया, अतएव असफ जाह का उनके विरुद्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। असफ जाह की राय के मुताबिक ही जहांगीर ने अहमद फारूकी के मित्रों तथा शिष्यों को इधर उधर भेज दिया। अहमद फारूकी का प्रभाव जहांगीर के दरबारियों तथा उच्च पदाधिकारियों पर कितना अधिक बढ़ गया था, इसका अनुमान इसी से किया जा सकता है कि जब जहांगीर ने उन्हें कैद कर लिया तब लगता था जैसे अहमद के अनुयायी बलवा कर देंगे। कहा जाता है कि अहमद फारूकी को कैद करने के कारण महावत खां इतना उत्तेजित हो गया कि वह फौज लेकर दिल्ली पर चढ़ाई करने की बात सोचने लगा, लेकिन अहमद फारूकी ने सबको शांत किया। इस प्रकार के विरोध को अहमद ने दबाया। उन्होंने यह कहला भेजा कि ऐसा कुछ करना उनकी इच्छा के विरुद्ध होगा। कहते हैं कि जब जहांगीर ने अपने उच्च पदाधिकारियों को जो अहमद के शिष्य और भक्त थे इधर उधर भेज दिया, तब अहमद फारूकी को आगे आने वाले खतरे का आभास मिल गया और उन्होंने अपने परिवार वालों को अफगानिस्तान भेज दिया। अब वे अपने कुछ अनुयायियों पृष्ठ संख्या 500 के साथ जहांगीर के दरबार में बादशाह के बुलाने पर आए तो दरबार के व्यवहार के मुताबिक उन्होंने बादशाह के सामने सिर नहीं झुकाया। जब उनसे वैसा करने के लिए कहा गया तब उन्होंने कहा कि उन्होंने परमात्मा की सृष्टि में किसी प्राणी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया है और न झुकाएंगे ही। इस पर बादशाह ने उन्हें कैद कर लिया। वे 3 वर्ष तक कैद रहे। जहांगीर स्वयं ही धीरे धीरे उनके प्रभाव में आने लगा और उन्हें केवल जेल से मुक्त ही नहीं कर दी बल्कि उनका शिष्य हो गया और उनकी राय के मुताबिक बहुत से काम किए। शिया संप्रदाय वालों का प्रभाव दरबार से बिल्कुल ही खत्म हो गया। उनके मुजतहिद सईद नूरुल्ला को बादशाह ने हाथी से कुचलवा कर मरवा डाला। अहमद फारूकी ने सुन्नी संप्रदाय की पूर्ण रूप से दरबार में प्रतिष्ठा की। अकबर के समय की बहुत सी प्रचलित बातों को जहांगीर ने इनके कहने से खत्म कर दिया। अकबर ने गौ मांस का निषेध कर दिया था। जहांगीर ने यह रुकावट दूर कर दी। दीवाने आम के निकट दरबारियों तथा बादशाह के लिए एक मस्जिद बनी। अहमद फारूकी की मृत्यु सन 1625 ईस्वी में हुई। औरंगजेब इनके पुत्र मासूम का शिष्य था। अहमद ने कई सुधार किए और कट्टरता को प्रश्रय दिया। सूफियों के सिद्धांत को बहुत दूर तक वे सनातन पंथी इस्लाम के निकट ले आए। सूफियों की उदारता को वहीं तक वे बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे जहां तक वह कुरान और सुन्ना से दूर न हो। संगीत को उन्होंने धर्म विरुद्ध बतलाया। भावाविष्टावस्था में नाच उठने को भी उन्होंने इस्लाम धर्म के विरुद्ध कहा। बादशाह अथवा पीर के सामने साष्टांग को भी उन्होंने अनुचित बतलाया। संतों और उनकी मजार पर दीप जलाने तथा उनकी पूजा आदि को भी धर्म के प्रतिकूल कहा। उन्होंने वजूदिया और शहूदिया विचारधाराओं पर प्रकाश डाला और शहूदिया विचारधारा को साधक के लिए अंतिम मार्गदर्शक बतलाया। उनके अनुसार दोनों में केवल पृष्ठ संख्या 501 इतना ही अंतर है कि साधना की प्रथमावस्था में साधक वजूदी रहता है और अपने को परमात्मा से अभिन्न मानता है, लेकिन जब वह पूर्णता प्राप्त करता है और अंतिम अवस्था में पहुँचता है तो उसे इस बात का ठीक ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा और वह दोनों अभिन्न नहीं हैं। भारतवर्ष में नक्शबंदी संप्रदाय के कुछ प्रमुख संतों और दरगाहों के नाम निम्नलिखित हैं। ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला बेरंग, मृत्यु दिल्ली 1603 ईस्वी। साईं तवक्कुल शाह नक्शबंदी, मृत्यु अंबाला। कुतुब साहिब, मृत्यु थानेसर। मुजद्दीद साहिब शेख अहमद फारूकी, मृत्यु सरहिंद 1615 ईस्वी। शेख ताहिर, मृत्यु लाहौर 1630 ईस्वी। मुल्ला हुसैन कश्मीर, मृत्यु 1640 ईस्वी। शेख अहमद सईद, मृत्यु सरहिंद 1659 ईस्वी। शेख मोहम्मद मासूम, मृत्यु सरहिंद 1668 ईस्वी। शेख सैफुद्दीन, मृत्यु सरहिंद 1686 ईस्वी। ख्वाजा खावंद महमूद, मृत्यु लाहौर। शेख सादी, मृत्यु मोजंग लाहौर 1696 ईस्वी। मखदूम हाफिज अब्दुल गफूर, मृत्यु कश्मीर 1701 ईस्वी। सईद नूर मोहम्मद, मृत्यु बदायूं 1723 ईस्वी। शेख अब्दुल अहमद, मृत्यु सरहिंद 1729 ईस्वी। शाह अबू सईद, मृत्यु टोंक 1834 ईस्वी। शाह अब्दुल रहमान, मृत्यु सिंध 1842 ईस्वी। सैयद इमाम अली शाह, मृत्यु रत्न छत्र गुरदासपुर 1860 ईस्वी। यह हम देख चुके हैं कि अहमद फारूकी सरहिंदी का कितना ऊंचा स्थान है और किस प्रकार से वे श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। इन्होंने अपने को पृष्ठ संख्या 502 कयूम कहा तथा अपने बाद के तीन उत्तराधिकारियों को भी उन्होंने कयूम ही कहा है। अल कयूम परमात्मा का नाम है। कयूम का अर्थ अविनाशी है। अहमद सरहिंदी ने कयूम का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया है। कयूम का अर्थ जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके अनुसार उसमें एक ऐसी शक्ति बतलाई गई है जिससे वह इंसानुल कामिल पूर्ण मानव से भी बड़ा समझाया जा सकता है। समस्त चराचर जगत, समस्त भूत, वर्तमान और भविष्य उसी की शक्ति से नियंत्रित होते हैं। नाम गुण सभी उसी के नियंत्रण में हैं। समस्त ब्रह्मांड उसके शासन के अंतर्गत हैं। सूर्य, चंद्र तथा समस्त ग्रह, तारे, परमात्मा का सिंहासन आदि सभी उसी की शक्ति से परिचालित होते हैं। समस्त प्राकृतिक तथा जागतिक व्यापार उसी के इशारे पर चलते हैं। मनुष्य के सुख दुख उसी की इच्छा पर निर्भर करते हैं। कलकल बहने वाली नदी, हवा, समुद्र में लहरों का उठना और गिरना, संसार की समस्त छोटी बड़ी घटनाएं सभी का सूत्र उसके हाथों में है। परमात्मा तक किसी की प्रार्थना नहीं पहुंच सकती अगर कयूम उसे न स्वीकार करे। वास्तव में उसी के चाहने पर हृदय साधना के पथ पर चलने के लिए प्रवृत्त होता है। सभी साधक, सभी उपासक उसी के चाहने से ही साधना और उपासना में लगे हुए हैं। बिना उसकी इच्छा के उनके लिए उस ओर अग्रसर होना संभव नहीं हो सकता। वह परमात्मा का प्रतिनिधि है। वह समस्त ब्रह्मांड का किबला है। जितने गौस, कुतुब, अब्दाल आदि हैं सभी उसी के आदेश का पालन करते हैं। अदृश्य संतों के ऊपर अफरादों का स्थान है और ये खुद के शासन के बाहर हैं। ये अफराद आदेश के लिए कयूम की ओर देखते हैं। इस कयूम को परमात्मा ने एक विशेष जात प्रदान की है जिसे महूब कहते हैं। अहमद फारूकी सरहिंदी ने बतलाया है कि परमात्मा ने केवल उसे तथा उसके बाद होने वाले उसके तीन उत्तराधिकारियों को ही कयूम का स्थान प्रदान किया है और उसके बाद वह और किसी को यह स्थान नहीं देगा। पृष्ठ संख्या 503। इस प्रकार से कयूम केवल चार ही हुए। अहमद का कहना है कि हजरत मोहम्मद के शरीर का निर्माण करने के पश्चात जो कुछ बच रहा उसी से परमात्मा ने उसके तथा अन्य तीन कयूमों के शरीर की सृष्टि की। रौ क भाग 1 पृष्ठ 93-97 सूफी पृष्ठ 287 पर उद्धृत। अहमद फारूकी सरहिंदी के नाम से बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं जिनसे उनके वैशिष्ट्य का पता चलता है। कहना अनावश्यक है कि ये कहानियां बाद में उनके अनुयायियों ने गढ़ ली हैं। कहा जाता है कि काबा उनके ही दर्शन के लिए आ गया था तथा उनकी मस्जिद संसार की सभी मस्जिदों से श्रेष्ठ है और उसमें जो नमाज पढ़ता है उसे संसार की सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ने का पुण्य मिलता है। वही पृष्ठ 93-97 परमात्मा ने उन्हें अपना प्रेम पात्र कहा है तथा हजरत मोहम्मद ने पुत्र। वही पृष्ठ 99-100 सभी देवदूत, जिन्न, मनुष्य तथा अन्य जीवधारी उनके सामने अपना सिर झुकाते हैं। अहमद का कहना था कि परमात्मा ने उन्हें अपनी दया का खजाना बनाया है और उस दया के वितरण का भी उन्हें अधिकार दिया है। परमात्मा ने जब उन पर अनुग्रह कर दया का अधिकारी बनाया तब सभी दया के देवदूत उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनसे कहा कि परमात्मा ने उन्हें आदेश दिया है कि वे उनकी अहमद की आज्ञा का पालन करें और उन्हीं अहमद के आदेशानुसार अपना कार्य करें। अहमद का कहना था कि पापियों का नरक से उद्धार करने आदि का काम उन्होंने अपने पुत्र मासूम को दिया है। मासूम उनका उत्तराधिकारी था। उसी प्रकार से अपने पुत्र को उन्होंने स्वर्ग में जाने के आदेश पत्र की मुहर दे रखी है। स्वर्ग में जाने के जो अधिकारी हैं उन्हें पहले वह मुहर लगवा लेनी पड़ती है। उनके खानकाह के आसपास की भूमि बड़ी पवित्र मानी जाती है। पृष्ठ संख्या 504। उनकी कब्र भी बड़ी पवित्र मानी जाती है। लोगों का विश्वास है कि वहाँ की धूल अगर किसी की कब्र में दे दी जाए तो वह व्यक्ति नरक की यातनाओं से कष्ट नहीं पाएगा। उनके खानकाह के उत्तर में जमीन का एक टुकड़ा है जो 40 गज लंबा और 30 गज चौड़ा है। कहा जाता है कि अगर किसी को वहाँ दफनाया जाए तो वह अवश्य स्वर्ग पाने का अधिकारी होगा। उसके पश्चिम में एक कुआं है। अहमद ने एक बार कहा था कि 3 बार जो उसका पानी पी ले वह निश्चित रूप से नरकाग्नि से रक्षा पा सकेगा और संभवतः स्वर्ग में स्थान पा सकता है। वही पृष्ठ 160। दूसरे कयूम मोहम्मद मासूम हुए। यह अहमद फारूकी के तृतीय पुत्र थे। इनका जन्म सन 1598 ईस्वी के लगभग हुआ था। औरंगजेब इनका शिष्य था। वैसे पहले वह इनके पिता अहमद फारूकी का भक्त था। जब से औरंगजेब ने मोहम्मद मासूम का शिष्यत्व ग्रहण किया तभी से मासूम ने उसकी सहायता करनी प्रारंभ कर दी थी। मासूम का बहुत प्रभाव था। गद्दी के लिए जब औरंगजेब के भाइयों में झगड़ा शुरू हुआ तब मासूम उसके बहुत बड़े सहायकों में थे। मासूम अत्यंत ही कट्टर विचारों के थे। उन्हीं के प्रभाव से औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया और संगीत पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि चिश्ती संप्रदाय वालों की समा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कहा जाता है कि जब मासूम का जन्म हुआ तब हजरत मोहम्मद और अन्य सभी पैगम्बरों तथा संतों की रूह ने आकर मासूम के कान में अजा की आवाज़ दुहराई। कहा जाता है कि कुरान की आयतों के कुछ अक्षरों का मतलब उनके पिता ने उन्हें बताया था। उन अक्षरों का मतलब सिर्फ हजरत मोहम्मद और उनके निकटस्थ साथियों को मालूम था। उनके 1000 वर्ष बाद अहमद फारूकी पर ही वे प्रकट किए गए तथा फारूकी ने अपने बेटे के सिवा और किसी को उसका रहस्य नहीं बतलाया। फारूकी ने किस तरह अपने पुत्र पर इस रहस्य को प्रकट किया इसके संबंध में पृष्ठ संख्या 505 कहा जाता है कि उस समय ऐसी सावधानी बरती गई कि कोई उसे सुन न ले। जिन्न आदि सभी दुष्ट आत्माओं को कैद कर दिया गया और देवदूत हाथ जोड़े हुए बाप बेटे के चारों तरफ खड़े कर दिए गए। वे दोनों मक्का में काबा के भीतर बंद थे। 3 दिनों तक यह क्रम चला। जब जब रहस्य उद्घाटन होता मासूम बेहोश हो जाते। वे सिर्फ एक ही अक्षर काफ का रहस्य जान सके। कहा जाता है कि बाद में अन्य अक्षरों का रहस्य स्वयं परमात्मा ने उन पर प्रकट किया। वही पृष्ठ 164-166। तीसरे कयूम ख्वाजा नक्शबंद हुजतुल्ला थे। वे द्वितीय कयूम के द्वितीय पुत्र थे। जिस साल इनका जन्म हुआ उस साल को साले मुतलक कहते हैं क्योंकि उसी साल कयूम प्रथम की मृत्यु हुई और कयूम द्वितीय उत्तराधिकारी हुए तथा तीसरे कयूम का जन्म हुआ। इनका जन्म सन 1624 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके नाम के साथ भी उनके चमत्कार की बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि उनकी पोती की मृत्यु हो गई थी जिसे इन्होंने 3 दिनों के बाद जिला दिया। औरंगजेब पर इनका भी पूरा प्रभाव था। चौथे कयूम जुबैर थे। ये अबुल अली के पुत्र थे और तृतीय कयूम के पौत्र। इनके नाम के साथ भी चमत्कारों की नाना कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन्हीं के काल में औरंगजेब की मृत्यु हुई। द्वितीय कयूम की तरह इन्होंने भी तत्कालीन राजनीति में प्रमुख भाग लिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात गद्दी के लिए उसके बेटों में जो कलह आरंभ हुआ उसमें जुबैर ने खुलकर हाथ बटाया। आजम और मुअज्जम के बीच इन्होंने मुअज्जम का साथ खुले तौर पर दिया। मुअज्जम की ही विजय हुई। वह इनका शिष्य था। चारों कयूम पूरे कट्टर थे। इनकी कट्टरता ने तत्कालीन राजनीति पर पूरा प्रभाव डाला। मुगल साम्राज्य के पतन में यह भी एक कारण था। भारतवर्ष के प्रमुख सूफी संप्रदायों में शत्तारी संप्रदाय भी है। भारतवर्ष में इसके प्रवर्तक फारस के अब्दुल्ला शत्तारी थे। इनकी मृत्यु मालवा में पृष्ठ संख्या 506 सन 1406 ईस्वी में हुई। ई पृष्ठ 289। उनकी मृत्यु का साल सन 1428-1429 भी कहा गया है। सूफी पृष्ठ 307। अब्दुल्ला शत्तारी सुप्रसिद्ध संत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के वंश के थे। शेख मोहम्मद आरिफ इनके पीर थे जिनसे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के रहस्यों को बड़ी शीघ्रता से सीख लिया। इसलिए वे शत्तारी कहलाए क्योंकि शत्तार का मतलब गति है। अपने पीर के आदेश से ये भारतवर्ष में आए। इस देश में आकर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने सूफी साधकों से साक्षात्कार करने की कोशिश की। उनसे उनका कहना था कि जो ईश्वरीय ज्ञान उन्हें है वे उनको बतलावे अथवा उनसे ही उस ज्ञान को लें। वे पहले जौनपुर में आकर बसे लेकिन वहां के सुल्तान से नहीं बने इसलिए वे मालवा चले गए। शत्तारी संप्रदाय वाले कादरी संप्रदाय वालों की तरह ही वस्त्र धारण करते हैं। चिश्ती और कादरियों के साथ बेनवा कहे जाते हैं। बेनवा का मतलब दीन अपाहिज है, जो अपने बाल कटा देते हैं वे मुलहिद नुमा कहलाते हैं, क्योंकि अर्थात वे धर्म के नियमों की पाबंदी को नहीं स्वीकार करते हैं, अतएव वे अधार्मिक समझे जाते हैं। जो बाल नहीं कटाते और सिर्फ अपने दाहिनी कनपटी के पास के बालों को काटाते हैं वे रसूल नुमा कहलाते हैं। संप्रदाय में दीक्षित होने के समय मुर्शिद दूसरे स्थान के कुछ बालों को काट देता है, इसलिए वे दाहिनी कनपटी के पास के कुछ बालों को कटाते हैं। इस संप्रदाय के मुख्य संतों में ग्वालियर के शाह मोहम्मद गौस थे। शाह मोहम्मद गौस के शिष्य और उत्तराधिकारी शाह वजीहुद्दीन गुजरात में बहुत मशहूर हुए। शाह मोहम्मद गौस को हुमायूं बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता था। वह हुमायूं के आध्यात्मिक गुरु थे। इस संप्रदाय के प्रति भी मुगल बादशाहों की बड़ी शक्ति थी।